रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बल धामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। देखो, भगवान के अवतार के कई कारण हैं। सबसे विचित्र कारण प्रताप भानु की कथा में बताया गया। इसमें भगवान का कोई लेना देना ही नहीं। नारद जी ने श्राप दिया तो भाई भगवान ने विवाह नहीं होने दिया तो नारद जी नाराज हो गए, श्राप दे दिया। जय और विजय के यहां सनकादिकों ने श्राप दिया और सनकादिकों से जय विजय ने ये वरदान मांगा कि हमारा भगवान में प्रेम बना रहे, भगवान की याद बनी रहे। तो सनकादिकों के कहने से भगवान तीन जन्म तीन अवतार लिए। प्रताप भानु के प्रसंग में कहीं पर कुछ बात ही नहीं है कि भगवान का कोई यहाँ लेना देना ही नहीं है। प्रताप भानु ने कुसंग किया, कुसंग के कारण से प्रताप भानु के मन में जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते नहीं कोई, और एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत होए। असंभव इच्छाएं हुई उसके मन में, असंभव इच्छाएं कुसंग के कारण से हुई। नहीं तो जितने कर्म करता था प्रताप भानु, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, वासुदेव अर्पित ज्ञानी, ऐसा था ये प्रताप भानु। वो क्यों तो 100 कल्पों की राज्य की इच्छा करे, क्यों ये शरीर मरने और बूढ़ेपन से डरे, कुछ नहीं, मेरा बूढ़ा होवे ही नहीं और मरे भी नहीं, असंभव बातें थी। कुसंगति के कारण से प्रताप भानु का विचार बदल गया। ब्राह्मणों का शाप लगा और रावण कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिए उन भाइयों ने। अब ये ब्राह्मण कुल में क्यों आया रावण? प्रताप भानु राजा था तो वो किसी राजकुल में ही आता, पर रावण ब्राह्मण कुल में क्यों आया? कि ब्राह्मणों ने भी सोच समझ करके नहीं, तैस में आकर के एकदम बात निकाली तो ब्राह्मण कुल को ही कलंकित किया। ब्राह्मणों का शाप प्रकारांतर से अपने ही कुल में लग गया कि भाई हमने भी तो शाप, क्यों दूसरी आकाशवाणी हुई ना, उसने कहा कि तुमने ये शाप ठीक नहीं किया, तो यहां तो जो भाई जैसा कर्म करता है उसको फल मिलता है। तो ब्राह्मणों ने सोच समझ करके शाप नहीं दिया तो ब्राह्मण कुल में ही रावण ने जन्म लिया। खूब उपद्रव करने लगे, तपस्या का बल लेकर, और उसके बेटे भी ऐसे ही हो गए। जप जोग बीरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीसा। रावण को पता चलता कि अमुक जगह यज्ञ हो रहा है, अमुक जगह तपस्या कोई कर रहा है, अमुक जगह कोई योग कर रहा है, अमुक जगह कोई बैरागी की बात कर रहा है, तो बस वहां जाता, या तो खुद चला जाता या दूसरों को भेजता, उसका यज्ञ वगैरह सब समाप्त कर देता। इतना अन्याय होने लगा, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कितने अन्याय का वर्णन करूं, मैं वर्णन कर नहीं सकता हूं। जिन लोगों की हिंसा पर इतनी प्रीति हो जाती है उन लोगों के पाप का फिर कोई अंत नहीं है। हिंसा सबसे बड़ा पाप है, हिंसा। ऐसी बातें होने लगी कि सब जगह चोर जुआरी बढ़ गए। माँ बाप की बात नहीं माने बहुत बड़ा अधर्म है, माँ बाप की बात नहीं मानना। और साधु सन करवा वही सेवा, साधु संतों से सेवा करवा में, ये भी पाप है। जिनके ये आचरण भवाने ते जानौ निशचर सब प्राणी, वो निशाचर ही होते हैं जो ऐसे आचरण करने वाले होते हैं। पृथ्वी घबराई, देखा कि अब क्या करूं। देखो पृथ्वी ने घबराहट से एक बहुत अच्छी बात कही कि मेरे पर पर्वतों का भार नहीं है, मेरे पर समुद्र का भार नहीं है, मेरे पर तालाबों का भार नहीं है। सबसे बड़ा भार क्या है कि जो किसी के साथ द्वेष रखता है, परद्रोही होता है, जो द्वेष रखने वाला होता है उसका भार मेरे पर बहुत चढ़ जाता है, क्या करूं। पर्वतों का भार नहीं। अब वो पृथ्वी देखती है कि यहां तो कोई मानने वाला नहीं, किसको कहूं। तो वो देवताओं के पास में गई, ऋषि मुनियों के पास में गई, अपना सब दुखड़ा सुनाया। ऋषि मुनि देवता ये सब के सब मिलकर के ब्रह्मा जी के वहां गए और ब्रह्मा जी ने देखा वे हमसे भी पार पड़ेगी नहीं। तब वो ब्रह्मा जी ने उस समय कहा कि देखो भाई, तुम्हारे और हमारे परम सहायक तो अविनाशी भगवान ही है, वही सहायता कर सकते हैं। हे पृथ्वी, थोड़ा मन में धैर्य धारण करो, वे भगवान भक्तों की पीड़ा को दूर करने में बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। देखो कोई बढ़िया डॉक्टर होता है ना, उसको सीरियस ऑपरेशन करने में बड़ा आनंद होता है। धोबी है, उसको बहुत काला कलूटा मेला चिकना हुआ कपड़ा है उसको धोने में बड़ा आनंद आता है। आप भी अपने घर में रोज कपड़े धोते हो, कभी मसौता वगैरह को खूब धो धुआ करके साफ करते हो और वो सूखता रहता है तो हृदय में अपने आप खुशी आती है, देखो ये कपड़ा हमने धोया कितना साफ हो गया। ऐसे भगवान अपने भक्तों को सुखी बनाते हैं तो भगवान को बड़ा आनंद का अनुभव होता है। चलो भगवान के पास चले। तो कहां चले, भगवान कहां मिलेंगे। किसी ने कहा चलो बैकुंठ में चलते हैं। पूरा बैकुंठ जान के है कोई, नारद जी भी वहीं थे। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो क्षीर सागर से आया हूं, अभी क्षीर सागर में मिलेंगे। किसी ने क्या कहा पार्वती, किसी ने क्या कहा, मैं भी वहीं बैठा हुआ था। मैंने कहा क्यों इधर उधर आप हाथ पैर पटको, क्यों इतनी अकल लगाओ, सीधी सीधी बात है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। आपके अंदर यदि प्रेम हो तो भगवान तत्काल प्रकट होते हैं, ये बात मैं जानता हूं। तो मैं जानता हूं का अर्थ क्या है, मेरे सामने कई बार प्रकट होते हैं भगवान। अब मेरे सामने प्रकट होते हैं ये बात कैसे कहा। देखो कोई जो जितना ज्यादा भगवान के नजदीक पहुंचा हुआ होता है वो उतना ही इस बात को गुप्त रखता है। और जो ये कहता है ना कि हम ऐसा भगवान को ये कर दे, हम भगवान से मिले हुए हैं हमारे ये है, वो पाखंड है, पाखंड है, वो झूठी बात है। जानकार होते हैं वो कहते नहीं कि हम भगवान के वहां, वो सिद्धांत की बात बोलते हैं, सिद्धांत में अपने को नहीं मिलाते। तो ये क्या बोल रहे हैं शंकर भगवान की, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, ये सिद्धांत है भगवान का। कैसे बच के निकल गए शंकर भगवान की सिद्धांत, मैं जानता हूं कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। आप सोचो कि कौन से देश में भगवान नहीं है, सर्व देश में भगवान है, तो इसका मतलब अपने में भी भगवान है। देखो भगवान कहा जाता ना सब जगह है, सब जगह का अर्थ सब जगह बताने में नहीं है, सब जगह भगवान है इसलिए भगवान मेरे में है। हम लोग सब जगह में जोर लगाते हैं, सब जगह भगवान है, सब जगह कट है, खम्मा में कट है, ट्यूबलाइट में कट है, ये मकान में कट है, सब जगह। अरे सब जगह का अर्थ अपने में है। अपने पर आओ। और सब काल में है तो सब काल में का अर्थ है कि अभी है, अभी सब काल में है तो अभी भी है। देश काल दिशी विदिशों माही कहूं सो कहां जहां प्रभु नाई। भगवान सब देश में, सब काल में, सब दिशाओं में, सब विदिशाओं में। दिशा और विदिशा, विदिशा क्या होती है? उपदिशा। देखो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशा है, फिर पूरब और उत्तर के बीच में जो है ये ईशान दिशा है, और उत्तर और पश्चिम इनके बीच में इधर एक कोण, एक कुंटाऊ दिशा है। सब ये दिशा है, ये अलग अलग। तो ईशान है, फिर वायव्य है, और फिर नैऋत्य है, फिर अग्नि है, ऐसे करके ये चार दिशा और है, और एक ऊपर एक नीचे, ऐसे दस दिशा हुई है। चार दिशा, चार उपदिशा, एक ऊपर एक नीचे। तो कहते हैं भगवान कहां नहीं, बताओ आप। आप कहते हो बैकुंठ में है, इसका मतलब जहां बैकुंठ नहीं है वहां भगवान नहीं है। भगवान का तो कभी अभाव होता ही नहीं है। प्रेमते प्रभु प्रगटई जिमी आगी, जैसे आग है वो प्रेम, आग प्रकट होती है, आग पैदा नहीं होती प्रकट होती है, ऐसे भगवान पैदा नहीं होते भगवान प्रकट होते हैं। आग है दिया सड़ाई से यूं घिसते घिसते आग प्रकट होती है, आग पैदा थोड़ी होती है, कहीं पर भी आग पैदा नहीं होती, आग प्रकट होती है। तो पार्वती मेरे वचनों का सबने आदर किया। अब देखा कि अपने हृदय में टटोलो भाई, देखो मैंने कहा ना कि सब जगह भगवान है, तब ब्रह्मा जी वगैरह ने क्या अपने अंदर ही भगवान को देखना चालू किया। अरे अपने में है, सब जगह है तो अपने में भी है। सुनी बिरांचि मन हरस तन पुलक नयन बहनी अस्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। ब्रह्मा जी तो नेत्र बंद किए भगवान का ध्यान करने लगे, आंखों से पानी बहने लगा, स्तुति करते हुए बोलते हैं जय जय सुर नायक जनस हुआ प्रभु। हे प्रभु आप देवताओं के नायक हो, देवताओं के शिरोमणि हो, सब भक्तजनों को सुख देने वाले हो, शरणागत लोगों की बात को रखने वाले, उनकी पालना करने वाले हो, गायों की ब्राह्मणों के हित करने वाले हो, असुरों का नाश करने वाले हो। सिंधु सुता प्रिय कंता, सिंधु माने समुद्र की कन्या कौन लक्ष्मी जी, उनके आप प्रिय स्वामी हो, आप दीन दयालु हो। अब देखो निर्गुण में भी बोलते हैं कि जय जय अविनाशी सबगत वासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। ये मुकुंद शब्द का अर्थ है ना, ये प्राय मत पता नहीं भगवान को मुकुंद क्यों कहते हैं। मुकुंद, मुकुंद का अर्थ होता है मुक्ति को देने वाला, भगवान मुक्ति को देने वाले हैं, इसलिए भगवान से मुक्ति मांगनी चाहिए। लोग बोलते तो हैं बाल मुकुंद भगवान फलाना मुकुंद, अरे मुकुंद का अर्थ क्या है? मुकुंद का अर्थ होता है मुक्ति देने वाला। महाराज आप अविनाशी हो, अविगत हो, आप इंद्रियों से अतीत हो, सब घटों में रहने वाले हो, सबके हृदयों में व्यापक हो, आनंद स्वरूप हो, लेकिन आप जो है चरित्र पुनीतम सगुण साकार में आते हो तो आप बड़ा पवित्र चरित्र करते हो। बड़े बड़े ऋषि महापुरुष आपको सच्चिदानंद रूप से ध्यान करते रहते हैं। अब भगवान के महिमा में बताते हैं जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा। भगवान ने सृष्टि बनाई, कोई सहायता नहीं ली भगवान ने, नहीं नहीं भगवान खुद ही सृष्टि के रूप में हो गए, भगवान खुद सृष्टि के रूप में बन गए। अब महाराज आप हमारी चिंता को दूर करो, आपको महाराज कौन जान सके। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकऊ कौन नहीं जाना, शेष आपको नहीं जान सकते, वेद आपको नहीं बता सकते, अशेष ऋषि मुनि नहीं जान सकते। आप महाराज किसी के कब्जे में आने वाले नहीं हो, पर कोई दीन होकर के आपको पुकारता है तो दीनों के तो आप बहुत प्यारे हो। तो महाराज हम जिस कारण से आए आपको पता ही है, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। उस समय में एक बहुत गंभीर आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा भगवान साक्षात प्रकट नहीं हुए। कोई कहेगा कि भगवान साक्षात क्यों नहीं आए, कि नहीं आए भाई, भगवान साक्षात इसलिए नहीं आए, वो भगवान ही जाने, क्योंकि यहां भगवान शंकर ने कहा ना कि प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अभी जो कुछ पुकार हो रही है वो प्रेम से नहीं हो रही, वो स्वार्थ से हो रही है। भगवान शंकर ने कहा कि तुम जो है स्वार्थ को मत देखो, प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम की तरफ विचार करो। प्रेम नहीं था, स्वार्थ था, भगवान प्रकट नहीं हुए, पर ये स्वार्थ भी कैसा था, सब लोगों के हित के लिए स्वार्थ था, सब लोगों के हित के लिए था। तो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, हे सिद्धों, देवता आदि, हमारी बात आप लोग खूब ध्यान से सुनो, कोई मन में डरो मत। आप लोगों के हित के लिए मैं मनुष्य के रूप में अवतार लूंगा और अपनी शक्तियों के साथ में अवतार लूंगा, सूर्य वंश में अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने जो तपस्या की है वे ही दशरथ और कौशल्या बनकर आए हैं। अब आज कश्यप अदिति की बात ही नहीं आई, मनुष्यत्व रूपा की बात आई थी। तो देखो गोस्वामी जी महाराज सबको आप मिश्रण कर रहे हैं एक साथ सबका। कश्यप अदिति महातप की ना, तिनकहु मैं पूरब बर दीना, उनको मैंने पहले वरदान दिया है कि वे दशरथ और कौशल्या बन करके आए हैं और वे इस समय अयोध्या के अंदर है, वहां जो है मैं अवतार लूंगा और मैं चार भाई मेरी शक्तियों में चारों शक्तियों को लेकर जो मैं वहां आऊंगा। नारद जी ने भी मुझे श्राप दिया था तो नारद जी के वचनों को भी सत्य करूंगा, अपनी शक्ति के सहित मैं अवतार लूंगा, सारी भूमिका में। अब देखो शक्ति ने समेत अवतरी हूं, ये नारद जी ने अवतार, ये नारद जी ने नहीं कहा था, नारद वचन सत्य सब करिय हूं, परम शक्ति समेत अवतरी हूं। ये परम शक्ति शब्द है ना, ये वहां भी आया है मनुष्य रूपा के समय में। मनु महाराज को साक्षात राम और सीता के दर्शन हुए थे तो उस अवतार का भी उन्होंने उल्लेख कर दिया कि परम शक्ति समेत अवतरी हूं और पृथ्वी का भार मुझे हल्का करना ही है, अब आप लोग निर्भय हो जाओ। अब उन लोगों ने ये प्रार्थना नहीं की कि महाराज आपने आकाशवाणी से तो कहा था एक बार अपना स्वरूप दिखाओ, क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि सुर स्वार्थी, देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, भगवान इनको दर्शन इसलिए नहीं दिए कि इनमें स्वार्थ वृत्ति ज्यादा है और रामचरित्र में देवताओं का भी हाथ रहेगा, यदि मेरे दर्शन हो जाएंगे तो देवता लोग माया नहीं फैला पाएंगे वहां अयोध्या में। देवताओं ने माया फैलाई, सरस्वती को भेजा कि तुम जाकर के कोई ऐसा काम करो कि राम जी का कल राज्याभिषेक होना ही नहीं चाहिए। सरस्वती गई अयोध्या में, वहां देखा अयोध्या वासी सब भगवान के प्रेम में डूबे हुए, कोई ऐसा नहीं है जिसमें भगवान का प्रेम नहीं हो, कैसे बुद्धि फेरे। एक मंथरा दिखाई दी, मंथरा, तब मंथरा की दिमाग में बैठ गई सरस्वती जाकर, तब मंथरा ने सब गड़बड़ किया और जाकर के केकी को सिखाया। तो जहां भगवान का प्रेम नहीं होता है वहां पर देवताओं की माया चलती है। चित्रकूट में देवताओं ने माया चलवाई तो बृहस्पति ने कहा कि यहां माया मत चलाना नहीं तो उल्टी पड़ जाएगी कि अयोध्या में हमने चलाई थी ना, अयोध्यावासी तो है चित्रकूट में, कोई और थोड़े ही है। क्या देखो अयोध्या में जो माया चलाई उस माया में भगवान का संकल्प था, भगवान चाहते थे कि मैं वन में जाऊं, लेकिन भगवान ये नहीं चाहते कि मेरे और मेरे भक्त के बीच में माया का प्रवेश हो, इसलिए तुम यहां कुछ भी मत करना। तो वहां देवता लोग डर गए। वहां लिखा है कि देवता सदा स्वार्थी होते हैं, कुटिल होते हैं, इसलिए भगवान ने यहां दर्शन नहीं दिए हो, भगवान ने आकाशवाणी कही। तुरंत फेरे सूर्य हृदय जुड़ाना, देवताओं को तो अपना मतलब था कि बस अब जो है अवतार हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा, सब रवाना हो गए। ब्रह्मा जी ने धैर्य दिलाया पृथ्वी को कि देख पृथ्वी अब तुम निर्भय हो जाओ, सब अपने अपने स्थान पर चले गए। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा कि हे देवताओं देखो अपना काम इतना ही पूरा नहीं हुआ, आप लोग वानर शरीर धारण करके पृथ्वी पर जाओ और भगवान की सेवा में तत्पर हो जाओ। सबको बंदरों के शरीर में जाना है, तो सब देवता बड़े राजी हो गए, ठीक है अब हम जो है बंदरों के शरीर में जाएंगे। जो ब्रह्मा जी ने कहा उसमें जरा सा भी देरी नहीं की। बनसर देह धरी छितिमाही अतुलित गिरी तरु नक आयुध सब बीर, ऐसे बंदर हो गए कि वो सब जंगलों में छा गए, पर्वतों में छा गए, दूर दूर तक बंदर ही बंदर हो गए। और वे हरि मार्ग चितवई मति धीरा, उसने कब अवतार हो, कब अवतार हो, कब अवतार हो, इन बंदरों के मन में यही इच्छा रही। गिरी कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रचि दूरी। उन्होंने फिर जो है अपने मन भावती जगहों पर पर्वतों में जंगलों में खूब बड़ी बड़ी सेनाएं बना ली बंदरों ने। अध्यात्म रामायण में आया कितने बंदर थे वो, कि सब बंदरों को निमंत्रण दिया कि तुम प्रश्रवण पर्वत पर आओ, कि ठीक है महाराज। इधर बंदरों का रेला आ रहा है, लंका के अंदर खूब लड़ाई हो रही है, लड़ाई होकर के राम जी महाराज पुष्पक विमान से जा रहे हैं सुग्रीव जी का सुग्रीव, ये बंदरों का आवागमन तो वैसे ही है जैसे अपन रवाना हुए थे कि हाँ महाराज, अरे बंदर 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 ही बंदर, आकाश में बंदर छाए हुए, अरे बंदरों कहाँ कि हम तो लंका जाने वाले, अरे युद्ध हो चुका अभी तक रेला यूं ही चल रहा है, लंका तो खाली हो गई, इधर बंदर आ ही रहे हैं, प्रश्रवण पर्वत के पीछे भी रेला चल रहा है, अरे अब जाओ काम हो गया, काम हो गया। तो बड़े दुखी होते हैं कि अरे हमारा बल तो कोई काम ही नहीं आया। तो रहे निज निज अनीक, अनीक माने सेना, वो सेना है अपनी अपनी सेना, विशाल सेना बना बना करके रहे। अब ये बात तो मैंने आपको ये कह दी, यह सब रुचिर चरित में भाका, अब सो सुनाओ बीच ही रखा, अब मैं बीच में रख दी वो बात, वो सुनाता हूं। अब गोस्वामी जी महाराज से पूछो कि आपने बीच में कौन सी बात की, आपने बीच में कौन सी बात रख दी कि भाई हमने जो बीच में बात छोड़ दी थी वो अब कह रहे हैं, अब सो सुनाओ जो बीच ही रखा, बीच में हमने जो बात छोड़ दी थी वो बात हम बोलते हैं। तो बीच में कहां अटकी वो बात, बात वहां अटकी कि शुरू शुरू में तुलसीदास जी महाराज कह रहे थे कि हम आपको रामचरितमानस सुना रहे हैं, ये रामचरितमानस सुना रहे हैं जिसमें भगवान राम का बड़ा विचित्र चरित्र आएगा। तो वहां चलते 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 शिवजी की कथा याज्ञवल्क जी ने सुनाई और उसमें पार्वती ने प्रश्न कर लिया निर्गुण सगुण का ये झमेला कि निर्गुण क्या है और सगुण क्या है, और उसमें भी राम जी के चरित्र का हेतु क्या है, किस कारण से राम जी ने अवतार लिया, तो वो कारण बताने में समय लग गया, इतना कारण बताने में इतना समय लग गया। अब सो सुनाऊ बीच ही जो राखा, कि अयोध्या नगरी है, अयोध्या, अयोध्या माने जिसके साथ कोई युद्ध कर ही न सके, ऐसी अयोध्या नगरी। दशरथ जी महाराज वहां रहते हैं, बड़े ज्ञानी थे वे दशरथ जी महाराज। देखो दशरथ जी थे ज्ञानी तो नहीं थे, तो भगति, तो हृदय भगति मती सारंग पानी, ज्ञानीकार समझदार थे वो, लेकिन साधना में क्या थी, दशरथ जी की साधना में थी भक्ति और कौशल्या जी की साधना में थी, साधना में था ज्ञान, और जनक जी महाराज की साधना में था ज्ञान, और सुनैना जी के साधना में थी भक्ति। इधर पति है वो भगत है और पत्नी है वो ज्ञानी है अयोध्या में, और उधर पति है वो ज्ञानी है और पत्नी है वो भक्ति है। ये दोनों हैं, क्या कारण है कि दोनों होने से दोनों की दोनों साधना हो गई। ज्ञान की बात जनक जी महाराज बता देते थे तो भक्ति की बात सुनैना जी बताती थी, इधर ज्ञान की बात कौशल्या जी बताती है तो भक्ति की बात दशरथ जी बताते हैं। तो हृदय भगति मती सारंग पानी, कौशल्यादि नारी प्रिय सबवा चरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्या जी महाराज हैं, कौशल्या जी हैं ये अपने पति के अनुकूल रहती हैं, भगवान के चरणों में प्रेम है। एक बार की बात है, राजा अपने गुरुजी के पास गए कि महाराज कोई बेटा नहीं है, क्या करूं। बहुत विनय से प्रार्थना की, वशिष्ठ जी महाराज ने उनको समझाया कि देखो समय आने दो, तुम्हारे चार बेटा होंगे, संसार में तुम्हारा भी यश होगा और उनका तो यश बहुत ही विलक्षण होगा, सारे भक्तों का भय दूर हो जाएगा चार बेटों से, अच्छी बात है। मान एक काम करो, तुम यज्ञ करो, पुण्य का काम करो। अब देखो जब तुम्हारे चार बेटा हो ही जाएंगे तो फिर यज्ञ की आज्ञा क्यों दी वशिष्ठ जी ने, ये दी लोगों के लिए कि शुभ काम को करते रहना चाहिए। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया और वहां पर एक बहुत अच्छा यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में से अग्नि देवता स्वयं प्रकट हुए, एक चरु लेकर के, सोने का चरु, उसमें खीर बनी हुई। वशिष्ठ जी महाराज को उन्होंने प्रदान की। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काजुबा सिद्ध तुम्हारा। अग्नि ने कहा हे वशिष्ठ जी महाराज, आपने जो शुभ विचार करके यज्ञ करवाया था ना, वो अब आपका ये ठीक ढंग से काम बन गया। और वशिष्ठ जी ने अपने इनको कह दिया, राजा को कह दिया कि ये देखो, ये तुम खीर ले आओ और अपने रानियों को यथा योग्य देओ। देखो बांटने के अंदर आजकल अपन तो कहते हैं बराबर देओ, बराबर में बराबर नहीं है, जथा जोग जई भाग बनाई, जो जिसके योग्य है उसको उतना दीजिए। तो अग्नि तो अदृश्य हो गए, वो ले लिया सब। राजा दशरथ जी ने चरु लेकर के अपने रानियों को बुलाया। अब देखो आप ध्यान देना, तभी राय प्रिय नारी बुलाई, ध्यान देना इसमें प्रिय बताया, प्रिय नारी। तो दशरथ जी महाराज के प्रिय नारी कौन थी, कि प्रिय नारी तीन थी, कौशल्या जी थी, केकई जी थी, सुमित्रा जी थी, लेकिन दशरथ जी के और भी कि और 360 रानियां थी, 720 का आधा कितना होता है 360, 360 रानियां थी उनकी। 360 रानियों में इनका जिक्र यहां रामायण में नहीं आएगा, वाल्मीकि में आया। तो तभी राय प्रिय नारी बुलाइए, प्रिय शब्द से ऐसा मालूम देता है कि और भी रानियां थी। तुलसीदास जी महाराज ने जो ये रामचरितमानस लिखा है, भगवान की भक्ति में लिखा है कि और रानियों का कोई चरित्र से मतलब नहीं है। तो प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या आदि तीनों आ गए। अब आए तो भाई कौशल्या जी को आधा हिस्सा दे दिया, यथा योग्य देना था, बराबर नहीं देना था, तो जो खीर थी उसका आधा हिस्सा कौशल्या जी को दे दिया। अब जो आधी खीर बची उसके दो हिस्से कर दिए, एक हिस्सा केकई को दे दिया और बाकी जो आधा बचा उसके दो हिस्से कर दिए। दो हिस्सा करके कौशल्या के हाथ से एक सुमित्रा को दिलाया, एक केकई के हाथ से सुमित्रा को दिलाया। देखो खीर का बंटवारा किस ढंग से हुआ है। इसी प्रकार से सुमित्रा भी दोनों को अपना अपना भाग दे देगी। सुमित्रा जी के दो बेटा हुए थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो दोनों ने यूं दिया खीर का हिस्सा, तो सुमित्रा जी ने अपना लक्ष्मण था वो कौशल्या जी को दे दिया राम जी के लिए, केकई ने दिया हिस्सा तो शत्रुघ्न था वो भरत के लिए दे दिया। ये यथा योग विभाग का सुपरिणाम है। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर कीना, कैकेयी कह नृपसो दयऊ, रयोस उभय भाग पुनि भयऊ, कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्रई मन प्रसन्न करी। फिर जो है भगवान गर्भ में आए। अब देखो गर्भ में आए तो चारों भाइयों का एक ही दिन जन्म हुआ, फिर भी एक बड़ा एक छोटा। राम जी बड़े हैं साहब, भरत जी छोटे हैं, लक्ष्मण जी और छोटे हैं, शत्रुघ्न जी सबसे छोटे हैं। अरे भाई इनका जन्म आगे पीछे तो क्या नहीं, एक ही दिन हुआ। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरुआ चर हर्ष जुत राम जन्म अनुकूल। तो दोहे में तो कहा है कि राम जी के जन्म के जो अनुकूल लक्षण ग्रह बार थे वो सब उस समय हुए। ये तो राम जी के जन्म की बात है, राम जी के जन्म की नहीं है। राम जी अपने शक्तियों के साथ आ रहे हैं तो एक राम से अपनी पूरी शक्तियां भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों आ जाएंगे। तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय सब, देखो पंचांग में पांच चीज होती है, जोग लगन ग्रह बार और तिथि, ये पंचांग है। आज क्या योग है, आज कैसा तिथि है, आज क्या बार है, आज क्या लगन है, आज कौन सा ग्रह है, ये पांचों चीज जहां देखी जाती हो वो पंचांग कहलाता है। तो राम जी के लिए सब अच्छा समय आया। चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी और जो है दिवस में मध्य दिवस था, शुक्ल पक्ष था, अभिजीत मुहूर्त था और बड़ी सुंदर शील सुगंध जो है शीतल सुगंध सुमंद वायु चल रही थी। न कोई ज्यादा गर्मी है, न कोई बहुत ज्यादा सर्दी है, सारे वन कुसुमित गिरगन मनियारा, जंगलों के अंदर फूल खिले हुए हैं, लताएं वृक्ष सब बड़े प्रसन्न है, आकाश एकदम निर्मल है। ऐसे समय में जब भगवान अवतार लेने वाले हैं तो ब्रह्मा देवता सब आकाश में आए, खूब बढ़िया आनंद से दुंदुभियां बजाई और वहां फूलों की वर्षा की और भगवान अयोध्या के अंदर सबसे पहले कौशल्या माता के सामने प्रकट हुए। जब कौशल्या माता के सामने भगवान चतुर्भुज से प्रकट हुए तो कौशल्या माता यूं देखती रह गई। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनुश्यामा निज आयुध भुजचारी। चार भुजा से विष्णु भगवान के रूप में दर्शन दिए उन्होंने, बड़ा सुंदर दिव्य उन्होंने वनमाला पहन रखी है, मोटी मोटी आंखें हैं और शोभा के तो वे सागर ही हैं। और खरारी, देखो खरारी नाम दे दिया, खरारी माने तो खर को मारने वाले, तो खर को तो अभी मारेंगे, अभी तो अवतार ले रहे हैं, आज तो जन्म हो रहा है, आपने खरारी कैसे लिख दिया तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमारे राम कोई आज एक बार ही अवतार थोड़ी लेते हैं, लेते ही रहते हैं वो। लेते ही रहते हैं कितनी बार, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि है अनादि। राम कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं है कि एक समय में हो गए, बस हो गए सो हो गए, न तो आगे होंगे न पहले कभी वे, ऐसा नहीं। ये खरारी शब्द दे करके राम की अनादिता सूचित की गई है। कौशल्या जी है वो स्तुति करते हैं दोनों हाथ जोड़ के, महाराज किन शब्दों से आपकी मैं स्तुति करूं, आप तो माया से गुणों से और ज्ञानों से सबसे अतीत हैं, आपका कोई मान नहीं है, मान परिमाण सीमा नहीं है, आप तक कोई प्रमाण पहुंचता नहीं है, करुणा सुख सागर सब सुख, आप करुणा और सुख के सागर हो, सब गुणों के भंडार हो, आप तो केवल मेरे ऊपर कृपा करने के लिए ये बड़ा दिव्य स्वरूप लेकर के आप आए हो, आपने अपनी माया से अनंत अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं, वो आप महाराज मेरे हृदय में विराजमान हुए, ये बड़ा उपहास की बात है, परंतु आपने मेरे गर्भ में निवास करके वास्तव में एक आश्चर्य किया है। भगवान उस समय में मुस्कुराने लगे। भगवान जब मुस्कुराए तब भगवान के मुस्कुराने का अर्थ क्या है कि माता तुम मुझे केवल बेटा भाव से देखो, अभी भगवत भाव से मत देखो। तो कई कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे, कि जैसा एक पुत्र में प्रेम होता है माता जी आप उसी प्रकार से मेरे सामने आई, आप इस समय मुझे भगवान मानोगी तो फिर भगवान मानोगे तो आप न हमको डांट सकोगी न आप देखो। इसीलिए भगवान भग गए मथुरा से। कृष्ण भगवान क्यों भग गए, भगवान ने देखा कि जेल खाने के अंदर यदि कंस आएगा और अभी मैं कंस को मार दूंगा तो ये वसुदेव जी और देवकी जी मुझे भगवान मान लेंगे, यहां से तो भगो प्रेमियों के वहां जाओ। वसुदेव जी तो ज्ञानी है और ये देवकी जी भी ज्ञानी है, कैसी स्तुति की है भागवत में ज्ञानियों जैसी, करे ज्ञानियों के यहाँ मेरा चरित्र नहीं चलेगा, चलो भगो प्रेमियों के यहाँ। अब प्रेमियों में क्या है, वहां प्रेम ही प्रेम होता, विशेषता दिखती नहीं है। गोपियों ने इतना प्रेम किया लेकिन भगवान समझ करके नहीं प्यार किया, मैं हमारा कन्हैया हमारा कन्हैया। यशोदा जी को भगवान ने अपने मुंह के अंदर अलौकिक दर्शन कराए, परंतु जब यशोदा जी देखा रही तो साक्षात भगवान, जितने भगवान ने उस माया को गायब कर दिया। अरे मुझे तो बेटा मानो, मेरे तो कान पकड़ो और कपलों पर मेरे दो चार लगाओ और मेरे पीछे दौड़ो, मुझे कसूरदार ठहराओ कि तूने माखन क्यों खाया, मेरे हाथ पकड़ो, मुझे डराओ, मैं रोऊं और तुम मुझे पुचकारो, मुझे छाती से लगाओ। इसके लिए भगवान तो लालायित रहते हैं। राम जी भी यही कह रहे हैं, कई कथा सुहाई मातु बुझाई, हे माता जी आपने क्या कहा था, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई रहनी प्रभु मुदे, तो वो आप उसको याद करो। तो आप तो पुत्र का प्रेम चाहती थी ना, इसलिए आप तो मुझे पुत्री समझ के प्रेम कीजिए। तब माता बोली कि महाराज फिर ये चतुर्भुज रूप हटाओ, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा, आप तो अब बाल लीला कीजिए महाराज। तो देखते देखते ही भगवान देखते देखते ही वहां छोटे से बन करके और रोने लग गए। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, अलग अलग जगह की बात है भाई। भगवान कृष्ण तो वहां जेल खाने में रोना चालू नहीं किया, भगवान देखा कि यहां बच्चे बन के रोएंगे तो कंस को पता चल जाए, कुछ नहीं वहां, वहां तो माया ही आके रोई, लेकिन भगवान यहां नहीं। भगवान वो प्रेमावतार है, ये मर्यादा अवतार है, ये मर्यादा में रहने वाले। तो मर्यादा बच्चा जो है जन्मता है रोता है, ये मर्यादा है। भगवान कृष्ण ने मर्यादा मर्यादा एक तरफ रखी है, अपने तो लीला करनी है। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावही हरिपद पावही तेन परई भव कूपा। ऐसा ये बड़ा सुंदर भगवान के अवतार का चरित्र है, इसको जो गाते हैं वो भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान ने अवतार ले लिया साहब। जब ये बच्चों के रोने की आवाज आई तो सारे राजमहल में आनंद ही आनंद छा गया। जाकर के दशरथ जी से कहा, महाराज बधाई हो बधाई हो। अच्छा ओहो, तो बस वो दशरथ जी महाराज भी आए, खूब आनंद उन्होंने देखा। गुरु वशिष्ठ जी महाराज आ गए। अनुपम बालक देखने जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। फिर वहां नंदीमुख श्राद्ध किया। नंदीमुख श्राद्ध क्या होता है कि भाई जन्म लेने से पहले या मृत्यु से पहले एक श्राद्ध होता है, घर में पता चले ना कि भाई एक मांगलिक काम भी होने वाला है, बूढ़े हैं ये दादाजी, ये बूढ़े दादाजी या दादी जी अब जाएंगी, और एक बहुत शुभ मंगल काम भी होने वाला है, तो पहले एक नंदी श्राद्ध करा देते हैं, नंदी श्राद्ध। वो नंदी मुख श्राद्ध करा देने से सुवा सूतक का दोष नहीं लगता, उसका पानी जो है उस अवस्था में पिया जा सकता है, सब पी सकते हैं। नंदी मुख श्राद्ध कराया हुआ होता है तब। इसलिए हमारे दशरथ जी महाराज ने पहले से ही नंदी मुख श्राद्ध करी। जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मणि निप विप्रन कह दिन। खूब दान दिया उन्होंने, ये दान दिया दशरथ जी ने। क्यों? नंदी मुख श्राद्ध कराया हुआ था। खूब अयोध्या को सजाया, महलों को सजाया, लोग लुगाइयां खूब झुंड के झुंड अयोध्या के राज महल में आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। और उन बच्चों को, बच्चे को देखकर बार बार उनके चरणों में प्रणाम करती है। मागध सूत बंदीगण गायक सबके अंदर आनंद। अब यह है कि सर्वस दान दीन सबका हो, इतने लोग उल्लसित हो रहे थे कि अपने पास जो कुछ था वो सब दान दिया, और जिसने दान लिया उसने भी रखा नहीं, उसने आगे दान दे दिया, उसने आगे दान दे दिया, उसने आगे दान दे दिया। क्योंकि ऐसा भी कहते हैं कि सर्वस दान दीन सबका हो, ऐसा भी कहते हैं कि दशरथ जी का सर्वस्व क्या था? रामलला, रामलला को दान में दे दिया, और जिसके पास भी गया उसका सर्वस्व कौन था? रामलला था। तो सब की गोद में आया हुआ आया वापिस दशरथ जी की गोद में ही आ गया। क्यों? सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताऊ। उन्होंने रखा नहीं, देते गए देते गए देते गए, वो वहीं आ गया। ऐसे दशरथ जी के पास में आए। इसी प्रकार से केकय सुता सुमित्रा दो, केकय सुता माने केकय ने और सुमित्रा जी ने, इन दोनों ने अपने अपने बालक जन्मे। तो बालक जन्मे तो इस प्रकार से सुमित्रा जी के दो बालक और केकय सुता के एक बालक, चार बालकों का जन्म हुआ। अयोध्या के अंदर तो आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा, खूब वेद ध्वनि हो रही है। तो कौतुक देख की पतंग भुलाना, एक मास ते जातन जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि सुनो पार्वती, वहां हम थे, जन्मोत्सव में हम गए थे, हमारे साथ काक भुसुंड जी थे, हम दोनों मनुष्य का रूप बनाए हुए ये आनंद देखने के लिए गए। तो हमने वहां देखा कि मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जानई कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। इतना आनंद आ रहा था कि सूर्य भगवान भी वहां खड़े रहे और ये उत्सव देखने लगे। लोग इतने आनंद में मस्त थे कि एक महीने तक दिन था लेकिन लोगों को पता ही नहीं चला। मास दिवस कर दिवस भा, अब लोग ने तो घड़ी देखे कि भाई अब इतना बज गया, क्या बात है, किसी को कोई याद ही नहीं, दूसरी बात याद न आए। एक मास तेई जातन जाना, सूर्य को पता नहीं चला, औरों को भी पता नहीं चला, सब आनंद ही आनंद में रहे। यह रहस्य जाना नहीं, को नहीं जाना, दिन मन चले करत गुनगाना। फिर एक महीने तक सूर्य भगवान निर्मिमेष दृष्टि से देखते रहे। रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होए, अरे होवे कैसे, रात होवे कैसे, सूर्य भगवान जो वहां पर अयोध्या में खड़े रहे। तो हमने भी एक चोरी की पार्वती, वहां चोरी क्या की महाराज, देखो हम और काक भुसुंड जी मनुष्य का रूप बनाकर गए, खूब पास पास में गए, राम जी के पास में गए। राम जी को कभी गोद से उठाए, गोद में उठाए, कभी राम जी को चूमे, कभी राम जी को छाती से लगाए, कभी वापिस पलने में रख दे। ऐसे हम और काक भूषण जी दोनों मनुष्य का रूप बनाकर खूब आनंद लेते। अब ये हमने देखा कि अरे पूरा आनंद राम जी के पास नहीं मिलता है, भक्तों के पास मिलता है। तो देखा अयोध्या में क्या आनंद, तो अयोध्या के अंदर गलियों में गए तो जहां जाए लोग मस्त होके नाचे। अरे हमने पूछा क्यों नाचते हो, क्यों नाचते हो? अरे छोड़ो, आए हो क्यों नाचना, पूछने वाले दशरथ जी के बेटा हुए, कौशल्या जी के बेटा हुआ है। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरे मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जापर होई। हे पार्वती, ये चरित्र वही सुन सकते हैं, वही जान सकते हैं जिसके ऊपर भगवान की अपार कृपा होती है। खूब वहां पर दान वगैरह दिए गए, कुछ दिन बीत गए, अब पंडित लोग इकट्ठे होने लगे। हमने देखा कि क्यों इकट्ठे हो रहे हो पंडित लोग, कि भाई अब इन बच्चों का नामकरण संस्कार करेंगे। अब ये पंडित लोग नामकरण किस इस प्रकार से रखते हैं, ये प्रसंग आगे चलेगा। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय राम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुटवंशी वाले की जय अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय जय जय